नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द ग्रेट वेव डेविड हैकेट फिशर की आर्थिक इतिहास पर आधारित पुस्तक है, जो पश्चिमी इतिहास में कीमतों के दीर्घकालिक उतार चढ़ावों को समाज के व्यापक परिवर्तन से जोड़कर देखती है। पहली बार 1996 में प्रकाशित यह पुस्तक केवल मुद्रास्फीति की व्याख्या नहीं करती, बल्कि यह पूछती है कि लगातार बढ़ती कीमतें लोगों के जीवन, असमानता, राजनीति, युद्ध और सांस्कृतिक कल्पना को कैसे बदलती हैं। फिशर मध्यकाल से 20वीं सदी तक चार बड़े मूल्य क्रांतियों का अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार ये घटनाएं यांत्रिक, एक जैसे अंतरालों पर लौटने वाले चक्र नहीं है, बल्कि अलग अवधि और तीव्रता वाली तरंगे हैं। प्रत्येक तरंग अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य व्यवस्था से उठती है, लंबे दबाव पैदा करती है और अंततः गहरे संकट तक पहुंच सकती है। विशाल मूल्य अभिलेखों को सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के साथ पढ़ना इस पुस्तक की विशिष्ट पद्धति है। इसका उद्देश्य किसी एक आर्थिक सूत्र को अंतिम सत्य बताना नहीं, बल्कि कीमतों को ऐतिहासिक परिवर्तन का संवेदनशील संकेतक मानकर दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चार मूल्य क्रांतियां और तरंगों की ऐतिहासिक संरचना। फिशर की केंद्रीय दलील यह है कि पश्चिमी इतिहास में कीमतों की कुछ असाधारण दीर्घकालिक उछालें हुईं, जिन्हें वे मूल्य क्रांति कहते हैं। वे उच्च मध्यकाल, पुनर्जागरण काल, 18वीं सदी के प्रबोधन युग और 19वीं से 20वीं सदी तक फैली आधुनिक तरंग को इस रूप में देखते हैं। यह वर्गीकरण साधारण व्यापार चक्रों से अलग है। व्यापार चक्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और उत्पादन या रोजगार के उतार चढ़ाव पर केंद्रित रहते हैं, जबकि फिशर की तरंगे कई पीढ़ियों तक चलती हैं और सामाजिक संस्थाओं तक असर पहुंचाती हैं। उनके लिए आरंभिक अवस्था में मूल्य स्थिरता, सामाजिक विश्वास और अपेक्षाकृत संतुलित व्यवस्था दिख सकती है। फिर बढ़ती मांग, जनसंख्या दबाव, संसाधन सीमाएं, मौद्रिक परिवर्तन और राजनीतिक तनाव जैसे कारक मूल्य वृद्धि को लगातार बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम केवल महंगाई नहीं होता, आय और संपत्ति का वितरण बदलता है। निश्चित आय वाले समूह दबाव में आते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर हो सकता है। फिशर तरंग शब्द इसलिए चुनते हैं कि इतिहास हूबहू नहीं दोहराता। हर प्रकरण की संस्थाएं, युद्ध, तकनीक और भौगोलिक परिस्थिति अलग है, फिर भी वे एक आवर्ती संरचना देखते हैं जिसमें दीर्घ समृद्धि के बाद असंतुलन, संकट और फिर नया संतुलन उभरता है। यह ढांचा पाठक को किसी एक वर्ष की मुद्रास्फीति के बजाय कीमतों की लंबी सामाजिक समयरेखा पर विचार करने को कहता है। दूसरा, मुद्रास्फीति का असमानता और सामाजिक तनाव से संबंध। पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान यह दिखाना है कि निरंतर मूल्य वृद्धि सभी लोगों को एक समान प्रभावित नहीं करती। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें मजदूरी और छोटे आय स्रोतों से तेज बढ़ती हैं, तब गरीब परिवारों और निश्चित आय पर निर्भर लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति घटती है। दूसरी ओर, जिनके पास भूमि, व्यापारिक माल, ऋण का नियंत्रण या बदलती कीमतों के साथ आय बढ़ाने की क्षमता होती है, वे अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकते हैं। इस असमान प्रभाव से समाज में केवल आर्थिक अंतर नहीं बढ़ता, बल्कि नैतिक और राजनीतिक तनाव भी पैदा होता है। फिशर के अध्ययन में मुद्रास्फीति को किसी एक नीति की भूल मानना पर्याप्त नहीं है। वे उसे जनसांख्यिकीय दबाव, उत्पादन सीमाओं, युद्ध, राजकोषीय जरूरतों और धन व्यवस्था के बीच बनने वाली जटिल प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस दृष्टि से मूल्य आंकड़े रोजमर्रा के जीवन का अभिलेख बन जाते हैं। अनाज, ईंधन और अन्य बुनियादी वस्तुओं की कीमतें यह संकेत देती हैं कि परिवारों की सुरक्षा कितनी बदल रही थी। फिशर का तर्क यह नहीं कि हर युद्ध या क्रांति का एकमात्र कारण महंगाई थी, बल्कि लंबी मुद्रास्फीति शिकायतों को तीखा करती है, समझौते की क्षमता कम कर सकती है और पहले से मौजूद संघर्षों को विस्फोटक बना सकती है। इसलिए पुस्तक आर्थिक आंकड़ों को वर्ग संबंधों, जन असंतोष और राज्य की वैधता से जोड़ती है। यह संबंध आज भी उपयोगी है, क्योंकि औसत मुद्रास्फीति दर के पीछे अलग अलग समूहों पर पड़ने वाले असमान बोझ को देखना जरूरी है। तीसरा, स्थिर मूल्य युगों और संकट कालों की अलग सांस्कृतिक मानसिकता फिशर कीमतों की गति को संस्कृति से जोड़ते हैं, पर संस्कृति को केवल अर्थव्यवस्था का निष्क्रिय परिणाम नहीं मानते। उनके अनुसार लंबे मूल्य संतुलन के दौरों में व्यवस्था, अनुपात, प्रगति और विवेक पर भरोसा बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे समय में लोगों को भविष्य अपेक्षाकृत अनुमान योग्य लग सकता है, जिससे संस्थाओं और दीर्घकालिक योजनाओं में विश्वास बनता है। इसके विपरीत, अस्थिर और लगातार बढ़ती कीमतों के समय दैनिक जीवन की गणना कठिन हो जाती है। भोजन, किराया, मजदूरी और बचत का संबंध अनिश्चित होने पर लोगों के अनुभव में अव्यवस्था और हानि का भाव प्रबल हो सकता है। फिशर इस मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को मूल्य क्रांतियों की एक प्रमुख विशेषता मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी साहित्यिक या धार्मिक प्रवृत्ति को केवल कीमतों से समझाया जा सकता है। युद्ध, धार्मिक विवाद, सत्ता संघर्ष और स्थानीय परंपराएं भी निर्णायक होते हैं। फिर भी पुस्तक यह उपयोगी प्रश्न उठाती है कि आर्थिक असुरक्षा लोगों के समय बोध, नैतिक भाषा और राजनीतिक अपेक्षाओं को किस प्रकार बदलती है। यह दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को संकीर्ण संख्यात्मक अध्ययन बनने से रोकता है। मूल्य अभिलेख यहाँ प्रवेश बिंदु है, अंतिम व्याख्या नहीं। फिशर के लिए सांस्कृतिक निराशा, सामाजिक भय और व्यवस्था की चाह उन व्यापक अनुभवों का हिस्सा हैं जो मूल्य अस्थिरता के दौरान उभर सकते हैं। इसी कारण पुस्तक बाजारों के इतिहास के साथ सामूहिक मानसिकता के इतिहास को भी पढ़ती है। चौथा, संकट, युद्ध और नए संतुलन की 6 चरणों वाली रूपरेखा। फिशर विभिन्न मूल्य तरंगों में एक व्यापक क्रम पहचानते हैं। इसमें लंबे समय की समृद्धि, राजनीतिक अव्यवस्था, मुद्रास्फीति की तीव्रता, आध्यात्मिक या नैतिक संकट, फिर क्रांति अथवा अपस्फीति से जुड़ा निर्णायक झटका और अंत में नए संतुलन का काल शामिल है। इस रूपरेखा का उद्देश्य यह कहना नहीं है कि इतिहास घड़ी की तरह तय क्रम में चलता है। बल्कि यह बताना है कि आर्थिक दबावों के बढ़ने पर राजनीतिक संस्थाएं और सामाजिक मान्यताएं अक्सर एक साथ परीक्षा में पड़ती हैं। फिशर युद्ध, अकाल, महामारी, विद्रोह और वित्तीय टूटन जैसे संकटों को मूल्य क्रांति के शिखर से संबद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए 14वीं सदी की यूरोपीय तबाही में युद्ध, अकाल और ब्लैक डेथ एक दूसरे से जुड़े संकट थे। पुस्तक का तर्क यह है कि कीमतों की दीर्घ स्थिरता ऐसे विनाशकारी दौरों की पृष्ठभूमि बनाने वाले दबावों में शामिल थी। संकट के बाद घटती आबादी, बदली हुई मजदूरी, संपत्ति के पुनर्वितरण और नई संस्थागत व्यवस्थाओं के कारण अपेक्षाकृत स्थिरता आ सकती है। इस क्रम में अपस्फीति को भी केवल सकारात्मक सुधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अक्सर गहरे आर्थिक और मानवीय आघात के साथ आती है। पाठक के लिए मुख्य सीख यह है कि मूल्य स्थिरता सामाजिक स्थिरता का एकमात्र कारण नहीं, लेकिन उसका महत्वपूर्ण आधार हो सकती है। साथ ही संकट को केवल अचानक हुई घटना मानने के बजाय उसके पहले जमा हुए दीर्घकालिक दबावों को देखना चाहिए। अंत में 20वीं सदी की अधूरी तरंग और फिशर के सिद्धांत की सीमाएं। फिशर ने 20वीं सदी की लगातार मौद्रिक मुद्रास्फीति को एक चौथी अभी अधूरी मूल्य क्रांति के रूप में देखा। पुस्तक लिखे जाने के समय उन्होंने निश्चित भविष्यवाणी करने से सावधानी पूर्वक परहेज किया। उनका जोर इस बात पर था कि अनिश्चितता मानव स्थिति का स्थायी तथ्य है, इसलिए पुस्तक को भविष्य बताने वाली योजना की तरह पढ़ना गलत होगा। इसका मूल्य इस चेतावनी में है कि अल्पकालिक कम मुद्रास्फीति को अंतिम विजय मान लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मूल्य दबावों के सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्रोत लंबे समय तक बने रह सकते हैं। फिर भी इस सिद्धांत की सीमाएं गंभीरता से समझनी चाहिए। आलोचकों ने कहा है कि फिशर जिन कठोर आर्थिक मॉडलों की आलोचना करते हैं उनकी अपनी 6 चरणों वाली संरचना भी कई बार बहुत नियमित लगती है। अलग अलग सदियों और क्षेत्रों के बीच समानता खोजने से स्थानीय कारणों, संस्थागत बदलावों और वैश्विक संबंधों की विशिष्टता दब सकती है। कारण और परिणाम का प्रश्न भी जटिल है। मुद्रास्फीति युद्ध या क्रांति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन युद्ध, राज्य वित्त और राजनीतिक संघर्ष स्वयं भी कीमतें बदलते हैं। इसीलिए पुस्तक का सबसे संतुलित उपयोग इसे एक शक्तिशाली व्याख्यात्मक परिकल्पना की तरह पढ़ना है, न कि हर ऐतिहासिक संकट की पूर्ण व्याख्या की तरह। इसकी ताकत विशाल ऐतिहासिक सामग्री को एक प्रश्न के इर्द गिर्द संगठित करना है। इसकी कमजोरी तब उभरती है जब तरंग की रूपरेखा विविध घटनाओं पर बहुत सख्ती से लागू की जाए। निष्कर्ष में, द ग्रेट वेव उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आर्थिक इतिहास को केवल ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति या बाजार के तकनीकी विवरण तक सीमित नहीं देखना चाहते। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और सार्वजनिक नीति के विद्यार्थी इससे समझ सकते हैं कि मूल्य परिवर्तन का अर्थ घरेलू बजट से कहीं व्यापक है। यह पुस्तक बताती है कि महंगाई के लंबे दौर असमानता, राज्य की क्षमता, सामाजिक भरोसे और सांस्कृतिक मनोदशा से जुड़ सकते हैं। शोधकर्ताओं के लिए इसका लाभ इसकी असाधारण कालिक व्यापकता और मूल्य अभिलेखों को सामाजिक साक्ष्यों के साथ पढ़ने की पद्धति में है। सामान्य पाठक के लिए यह वर्तमान की महंगाई संबंधी चिंताओं को किसी सरल भविष्यवाणी में बदले बिना लंबा ऐतिहासिक संदर्भ देती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में फिशर का अंतर यह है कि वे मुद्रास्फीति के कारणों की संकीर्ण बहस से आगे बढ़कर उसके मानवीय परिणामों पर केंद्रित रहते हैं। वे चार अलग युगों को एक ही प्रश्न से जोड़ते हैं, फिर भी अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। हालांकि पाठक को इसकी व्यापक रूपरेखा को आलोचनात्मक दृष्टि से लेना चाहिए, क्योंकि हर ऐतिहासिक संघर्ष को मूल्य तरंग से समझाना पर्याप्त नहीं है। यही तनाव पुस्तक को उपयोगी बनाता है। यह तैयार उत्तर देने के बजाय पूछती है कि कीमतें किन सामाजिक रिश्तों को बदलती हैं, कौन लोग उन बदलावों का बोझ उठाते हैं और स्थिरता के टूटने से पहले कौन से संकेत दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह आर्थिक इतिहास में दीर्घकालिक सोच का प्रभावशाली, बहस योग्य और गंभीर उदाहरण है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड हैकेट फिशर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।